हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 16 एंड 17। अर्जुन अत्यंत ही सुंदर बात भगवान से कह रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ अर्जुन के इन वचनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकम् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकम् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। शब्दार्थ वक्तुम अर्हस्य शेषेण, वक्तुम मतलब कहने के लिए, अर्हसि यानी योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्या दायवी या अलौकिक, ही निश्चय ही आत्मा अपना विभूतया ऐश्वर्य, या भी विभूति मृलोका, या भी मतलब जिन विभूति भी मतलब ऐश्वर्यों से, और लोका मतलब समस्त लोकों को, इमांस त्वाम इन सारे लोकों में, त्वाम यानी आप, व्याप्य तिष्ठसी व्याप्त होकर तिष्ठति स्थित है। अनुवाद, अर्जुन कह रहे हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा अपने तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। इसके साथ ही हम अगला श्लोक भी पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 17। मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्माया। शब्दात् कथम यानी किस प्रकार से, कैसे, विद्याम अहम मैं कैसे जान सकूंगा, योगिन हे परम योगी, त्वाम आपको, सदा सदैव, परिचिंतयन चिंतन करता हुआ, केशु केशु च भावेशु, केशु यानी किस किस च भावेशु, भावेशु का मतलब यहाँ पर भावना नहीं है, हृदय के अंदर जो भावना आता है ना वो नहीं है, रूपों में मतलब किस किस भाव में, चिंत्योसि आपका स्मरण किया जाता है, भगवन मया हे भगवान मेरे द्वारा। अनुवाद, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्व साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। आसुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछा जा रहा है। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित कर रहा है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए प्रकट या अप्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन वृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तु पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग या भगवान का ऐश्वर्य। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अर्जुन ने भगवान को श्लोक नंबर 12 और 13 बताया कि मैं ये मान गया हूँ कि आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। मैंने आपकी बात को और समस्त ऋषियों की बात को स्वीकार कर लिया है। मैं ये समझ गया हूँ कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, आध्यात्मिक जगत में रहते हो और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जो लोक है वो आप ही हो, परम धाम भी आप ही हो। और आपकी इस आध्यात्मिक सत्य को, क्या परम सत्य हो परम ब्रह्म हो, वो सब सत्य है, मैं इसको पूरी तरह से समझ गया हूँ। पर जो इस चेतना में नहीं है, मतलब जो आपको परम सत्य नहीं जानते हैं, उनके विषय में अर्जुन यहाँ पर चिंतित है। क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपको क्या करना है, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश। अभी इस भौतिक जगत में जितने भी जीव आए हैं उन्हें युद्ध तो करना है। युद्ध का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन तो करना है। अब अपने कर्तव्य का पालन यदि वो खाली करते रहेंगे और तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण नहीं करेंगे, भगवान को स्मरण नहीं करेंगे, तो उनका कर्तव्य पालन निरी व्यर्थ का श्रम होगा, बिल्कुल लाभ नहीं होगा उसका।
श्रम एव ही केवलम, यदि वो सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और भगवान के प्रति अपने प्रेम को निर्माण नहीं करेंगे, भगवान को स्मरण नहीं करेंगे, तो फिर उनके सारे कर्तव्यों का पालन करना तो फिजूल होगा, कोई लाभ नहीं होगा उनके मनुष्य जीवन का। तो अर्जुन, इतनी कृपा, ये वास्तव में भक्त के हृदय का भाव है। एक भक्त जो है वो केवल अपना कल्याण नहीं चाहता, वो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण चाहता है, संपूर्ण जीवों का कल्याण चाहता है। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपको समझ गया, वो कैसे, आपकी कृपा से। क्योंकि अर्जुन ने पहले, अभी इससे पहले जो हम लोग 14 और 15 पढ़ के है ना, उसमें भगवान को कहा, नहीं थे भगवान व्यक्तिम विदुर देवाना दानवा, आपको तो ना देवता समझ सकते हैं और न ही असुरगण समझ सकते हैं। तो कौन समझ सकता है भगवान को? अर्जुन ने बताया, स्वयं वात्पनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, आपको यदि कोई समझ सकता है तो केवल आप ही अपनी अंतरंग शक्ति से अपने आप को समझ सकते हैं। आपको समझना किसी भी जीव मात्र के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिस पर आप कृपा करोगे, आप जिसको समझाओगे, उससे तो समझ में आ जाएगा ना। तो मुझे तो आपकी कृपा से ये समझ में आ गया कि आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हो, आप ही संपूर्ण कारणों, समस्त कारणों के कारण हो, आप संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जीवों के सर्वस्व शाहमृद्धि सन्नि, हृदय में व्याप्त हो और संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्वामी हो, ये मुझे समझ में आ गया क्योंकि आपकी कृपा थी। लेकिन वो जो लोग अभी तक भौतिक स्तर पर हैं, जो अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो शुद्ध भक्ति का स्तर और भगवान की महिमा के स्तर को स्वीकार कर लिया, पर जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते हैं, वो तो अभी तक भौतिक स्तर पर रहेंगे। तो भौतिक स्तर पर रहते हुए वो किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि धर्म के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। धर्म जब तक जीव नहीं करता है, तब तक वो पशु के स्तर पर है। धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मा विहीन पशु भीर समाना, अगर जीव धर्म नहीं करता तो फिर वो पशु है। तो धर्म के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा मुख्य है ना, वो क्या है जानते हैं? वो है स्मर्तव्य सततम विषु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विद्धि निषेधास्युर एतयोर एव किंकर, कि केवल एक ही रूल है जिसके बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी हैं धर्म के, जितने भी विधि निषेध हैं, वो सब उसके किंकर हैं। और वो रूल क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम, सदैव हमें कृष्ण का चिंतन करना है और सदैव कृष्ण को याद करना है। कोई क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको भूल जाएं। तो उसके लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी भौतिक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक स्तर पर भगवान को कैसे याद किया जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवद गीता सुना देते हैं, फिर 18.63 में भगवान अर्जुन को कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्ये तदशेषेण शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तो तुम्हें संपूर्ण गुह्यतम ज्ञान बता दिया है, अब तुम क्या करो? विमृश्ये तद, उस पर सोच विचार करो, पूरी तरह से उस पर मनन करो और फिर तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। जब अर्जुन ने इतना सुना तो अर्जुन जो है वो परेशान हो गया कि अभी तो भगवान ने 547 श्लोक बता दिए मुझे, अब इन सारे श्लोकों को मैं कैसे वापस से विचार करूं? कहां से मैं पहले कर्म योग को याद करूं, फिर भगवान ने सांख्य योग बताया उसको याद करूं, फिर तो ध्यान योग बताया था, फिर भक्ति योग बताया और उसके बाद ज्ञान योग बताया, मैं इन सबको कैसे सोचूं, कैसे विचारूं और उनमें जो वास्तविक तथ्य है उसको कैसे मानकर वो कार्य कैसे करूं? अब क्योंकि अर्जुन जो है वो उस समय युद्ध भूमि में खड़ा था, उसे अपना कर्तव्य सोचना था, तो समझ में उसको याद नहीं आ रहा था, दुखी हो रहा था। ऐसा अर्जुन को जब भगवान ने परेशान देखा, क्योंकि देखो अभी है ना, एक बच्चे को हम बता दें डिटेल्स पूरी, और छोटा सा बच्चा हो, अभी उसकी बुद्धि इतनी विकसित ना हो, उसको हम दो प्यालियां दें, दो मतलब ग्लास में, एक में हम वाइन डाल के दें और दूसरे में दूध डाल के दें, तो हम उसको दोनों के विषय में बताएं। अभी छोटा बच्चा है, 2 साल का 3 साल का है, उसको पता नहीं है शराब क्या है या दूध के अंदर क्या क्वालिटीज है, सब पता नहीं उसको, लेकिन हम उसको बोलें पहले से थोड़ा सा ज्ञान बता दें और बोलें अब इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ग्रहण करो, तुम्हारे लिए जो हितकर है, जो तुम्हें अच्छा, तो परेशान हो जाएगा ना, हो सकता है वो गलत चॉइस कर ले, और अगर उसने गलत चॉइस कर लिया तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। फिर माता जो है वो उसको वापिस से जो अच्छा होगा ना उसकी क्वालिटीज बताएगी, देखो ये जो है ना इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वाले की क्वालिटीज जब वापिस उसको पता चलेगी तो वो बहुत आसानी से उसको स्वीकार करेगा। तो फिर अर्जुन को भगवान ने 63 में कहा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन फिर भगवान की करुणा जो है वो उस समय प्रकट हुई और अर्जुन को कहा समर तुम अपना डिसीजन मत लो, मैं तुम्हें आगे 64 में भगवान ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर बात बताई, अर्जुन को कहा सर्व गुह्य तमम भूय शुणो में परम वच, ये भूय शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान ने कहा ये जो है वो सर्व गुह्य तमम है, इससे ज्यादा सीक्रेट और कुछ नहीं है, सब सारे रहस्यों में सबसे अधिक रहस्य है, और भूय मतलब वापिस से तुमको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो, तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इष्टोसि मे दृढ़मिति, इष्टोसि का मतलब होता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, दृढ़मिति मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अनलिमिटेड प्रेम करता हूं, और ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसे तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे डिसीजन पर तुम्हें छोड़ नहीं देता, क्योंकि अगर तुमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारा विजय होना, इसलिए मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूं क्या करना है। फिर भगवान ने वही बात वापस से बताई जो उन्होंने चैप्टर नंबर 9:34 में बताई थी, एक ही श्लोक को दोबारा रिपीट किया, पहले बता चुके थे क्या मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो सिंह, पहले बताया था अभी वापिस से बता रहे हैं कि देखो वास्तविक कल्याण तभी होगा जब तुम मेरा मनन करोगे, सदैव मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, और यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा मामे वैश्यसि सत्यम ते, मैं निश्चित रूप से तुमको सत्य कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि तुम यदि इस प्रकार करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि प्रति जाने प्रियो सी में, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो वास्तव में भगवान जो है वो जीव से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सदैव भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, सदैव भगवान को स्मरण करना पड़ेगा। अब स्मरण जो है वो तभी संभव है जब हम पहले के 2 स्टेप को क्रॉस करके आए, क्योंकि नवधा भक्ति में जब हम सुनते हैं तो क्या है, पहले है श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, उसके बाद स्मरणम। डायरेक्ट से भगवान को स्मरण नहीं किया जा सकता, उसके पहले श्रवण करना पड़ेगा, इसीलिए अर्जुन भगवान को आज कह रहे हैं वक्तुम, आप कहिए, क्योंकि आपको तो केवल आप ही समझ सकते हो, इसलिए आप वक्तुम अरहस्य शेषेण अशेषेण, मतलब पूरा का पूरा कुछ भी बताइए, बचा अपने पास बचा मत दीजिएगा, विस्तार से अशेषेण, तो आपके आपकी जो जो विभूतियों में आपको स्मरण किया जा सकता है, या भीर विभूति बिरलोकान, ये बिरलोकान जो शब्द है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन भगवान को कह रहे आध्यात्मिक समझ में आ गया, अब ये बताइए इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार हर शय में रचे बसे हो, इस भौतिक जगत में आप किस तरह से आपकी महिमा हर एक वस्तु से झलकती है उसके विषय में बताइए। क्योंकि हर कोई आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, तो आप भौतिक वस्तुओं में आप किस तरह से रचे बसे हो वो आप बताइए। तो भगवान को कहते हैं वक्तो अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूत है। आप चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, आपकी समस्त विभूतियां, आपकी समस्त ऐश्वर्य जो है वो दिव्य है। तो इस भौत याभिर विभूति भिर लोकान, इस भौतिक जगत में आप किन किन समस्त लोकों में किस तरह से व्याप्त हैं, इन लोक भिर लोकान एमास तुम व्याप्त प्रतिष्ठसी, किस तरह से व्याप्त हैं उसके विषय में आप मुझे बताएं। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य बहुत सुंदर बात बताई कि सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेष आदि भगवान के सर्व व्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के साकार स्वरूप को तो स्वीकार नहीं करते, भक्त जनों के लिए वह भगवान जो है वही सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण के अंदर दिखता है। परंतु जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो सामान्य जन होते हैं, वो कृष्ण में सब कुछ को नहीं देख सकते, परंतु सब कुछ में कृष्ण को ढूंढते हैं। वो कण कण में कृष्ण को ढूंढते हैं, परंतु कृष्ण के अंदर कण कण को नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार से सर्वव्यापी रूप में विद्यमान है। और वो क्यों पूछ रहा है, श्री प्रभुपाद जी ने कहा हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हित इसी में है कि वो भगवान का स्मरण करे। और आगे अर्जुन ने भगवान को कहा कथम विद्यामहम योगिन, योगिन का मतलब होता है योगियों में परम श्रेष्ठ। वैसे भगवान को सदैव योगेश्वर कहा जाता है, परंतु यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को योगिन कहा है। और भगवान ने सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 25 में बताया था नाहम प्रकाश सर्वस्थ योग माया समावृता, मैं हर किसी के सामने प्रकट होता नहीं हूँ और अपनी योग माया के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, छुपा रहता हूँ। श्लो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित कर रहे क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं और जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। वो भगवान जो हैं वो योग शक्ति के स्वामी हैं। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं कथम विद्यामहम योगिन, मैं आपको कैसे जानूं। भले ही अर्जुन को पता है, श्री प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं यहाँ पर कि अर्जुन तो उच्च कोटि के भक्त हैं, वो तो भगवान का चिंतन कर ही सकते हैं, लेकिन जो सामान्य जन होते हैं जिन्हें कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है, कृष्ण के विषय में निरंतर सोच नहीं सकते, वह तो भौतिक चिंतन करेंगे ना। तो अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान को कहते हैं केशु केशु च भावेशु, आप बताओ किस किस स्वरूप में आपको चिंतन किया जा सकता है। क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ नहीं सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस तरह से प्रकट है। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं क्योंकि आप तो परम योगी हैं, आप तो अपने आप को छुपा देते हो क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अर्जुन भगवान को स्वीकार कर रहे हैं कि वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, केवल भगवान को समझना ही शास्त्रों को, भगवान को समझकर भगवान को सरेंडर करना, भगवान की शरण में जाना ही वास्तविक शास्त्रों का उद्देश्य है। और शास्त्रों के अंदर निपुण भी कौन है, भगवान ही है। और भगवान को कौन समझ सकता है, केवल भगवान सर्व स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, केवल आप ही शास्त्र को समझ सकते हैं और केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हैं। आप निपुण हैं, योग का सार क्या है आपको जानना और आपको प्रसन्न करना। जो ध्यान योगी होते हैं वो ध्यान लगाते हैं और ध्यान का लक्ष्य क्या है, कृष्ण। जैसे भगवान ने बताया 6.47, भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता। भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेषां, बहुत सारे योगी हैं, लेकिन उन समस्त प्रकार के योगियों में से मद्गते नान्तरात्मना, मद्गते यानी जो मेरे परायण है, सदैव मेरे विषय में सोचते हैं, अंतरात्मना अपने आत्मा में, अपने अंतर में, अपने मन में जो केवल मेरे विषय में सोचते हैं, और उसके साथ श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा के साथ दिव्य प्रेमा भक्ति मेरी करता है और प्रेम से मुझे स्मरण करता है, यो माम समय युक्त तमोमता, समय वो जो है वो इस तरह से वास्तविक योगी है, परम योगी है। और ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है। सबों में सर्वश्रेष्ठ वही है जो मेरे विषय में सोचता है। अब कृष्ण आप ही बता दो कि आपके विषय में किन किन रूपों में सोचा जा सकता है, क्योंकि हम जैसे भौतिक लोग होते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर आपको संपूर्ण समय पर स्मरण नहीं कर सकते, और कहीं ऐसे समय में हमारी मृत्यु हो जाएगी जब हमारी भौतिक स्थिति होगी, भौतिक विचार होंगे, तो हम भौतिक जगत में ही बारंबार आते रहेंगे। इसे आप ही बता दो, इस भौतिक जगत में रहते हुए आपको कैसे स्मरण किया जा सकता है, किन किन रूपों में स्मरण किया जा सकता है। तो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर देंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे